محترمہ زہرا زیدی صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں، سلام عرض کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں۔
وعلیکم السلام، بہت شکریہ کہ آپ نے قبول کیا میرا آنا، اور ناظرین کی خدمت میں بھی بہت سارا سلام، اور امید ہے کہ پروگرام آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور میں آپ کے سوالوں کے صحیح جواب دے سکوں گی، اس کی بھی دعا کر رہی ہوں۔
ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ دے سکتی ہیں جوابات۔ اور متوازن گھرانہ آج کا ہمارا موضوع رہے گا۔ لفظ متوازن اور گھرانہ، یہاں پر متوازن سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں، متوازن کوئی بھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب، یعنی توازن جس میں ہو، بیلنس جس میں ہو، ترازو کی دونوں پلے بالکل برابر ہوں، تو پھر اس کو ظاہر ہے کہ متوازن کہتے ہیں اس کیفیت کو۔ گھرانے کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب ایک، میں نے پچھلے پروگراموں میں جو شادی کے سلسلے میں بس اس کی شادی کی کیا ضرورت ہے اور کیوں تاکید ہے اسلام میں، اس سلسلے میں نے کہا تھا کہ خدا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کو وہ گھرانہ سب سے، یعنی سب سے زیادہ جس چیز کی بنیاد پڑے، یعنی جو بنیاد سب زیادہ پسند ہے، اس کو کسی بھی عمارت کی بنیاد پڑتی ہے، تو حتیٰ مسجد سوچیں اس کی بنیاد پڑتی ہے، کہ خداوند عالم کو جو بنیاد سب سے زیادہ پسند ہے وہ کسی، جب کسی گھرانے کی بنیاد پڑتی ہے تو اسے وہ بہت پسند ہے۔ تو اس ایسے گھرانے جو خدا کی پسند کا گھرانہ ہو، اس کے لیے پہلے سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں جب لڑکا اور لڑکی کے کو وہ کیا جاتا ہے، یعنی انتخاب کیا جاتا ہے تو اس رشتے کے لیے، تو اس میں پھر جذباتیت نہیں ہونی چاہیے، اس میں حقائق کو سامنے رکھا جائے۔ اگر کئی بار پسند کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے کو مطلب اتنی شدت سے پسند کرتے ہیں کہ شادی ضرور ہو، ضرور ہو، لیکن پھر اس شادی کے لیے جو ایک دوسرے سے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہوئی ہے، اس میں لڑکے اور لڑکی کو پھر اب یہ سوچ کے آنا چاہیے کہ وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں گے، بلکہ یعنی میں چاہوں گی یا میں چاہوں گا، بلکہ وہ ہوگا، ہاں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے، اس فکر کے ساتھ آنا چاہیے۔ تو جب شادی ہو گئی اور ایک گھرانہ بن گیا، تو میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے وہ ایران میں تھوڑا اس سے مختلف ہے۔ قدیم زمانے میں ایران میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ گھرانے جو ہوتے تھے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جسے کہتے ہیں وہ ہوتا تھا، یعنی گھر ہوتے تھے اور اس میں مختلف لوگ رہتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں جو گھرانہ ہوا اور جو ایران میں تھا، اس میں فرق یہ آیا کہ ایران میں ہر گھر جو تھا، یعنی بڑا سا گھر، جیسے جو اصل میں بنی ہاشم کا گھر عرب میں جو ہوتا تھا، یعنی جہاں اسلام آیا پہلے، تو اس میں یہ گھر ہوتا تھا، اور گھر ہر جگہ ایک فل یونٹ ہوتی تھی، یعنی ملے ہوئے گھر ہیں، بالکل نزدیک گھر ہیں، بالکل ایک ہی گھر کے حصے ہیں، لیکن ان کا ایک چھوٹا صحن الگ، اسے خلوت کہتے تھے، اور اسی طرح کمرے اور یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں کے اوپر یہ تھا کہ کچن باورچی خانہ ایک ہی ہوتا تھا، ساتھ کھانا پکتا تھا، بعض میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بھی الگ تھا، لیکن مل کے کھاتے تھے، ہر وقت ملے رہتے تھے۔ تو ایک تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، ایک ایران میں جو اب ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی اور بچہ، بچے یا بچہ ایک یونٹ کہلاتا ہے، ایک خاندان گھرانہ کہلاتا ہے وہ۔ لیکن ہم، میں چونکہ بات مجھے ہندوستان پاکستان کی کرنی ہے، وہاں اردو سپیکنگز کی کرنی ہے، تو اس لیے ہم دونوں فیملیز کو، دونوں طرح کی فیملیز کو مد نظر رکھیں گے۔ تو اس میں یہ کہ یعنی جب لڑکی شادی کرے اور لڑکا شادی کرے، تو اس کو یہ سوچنا ہوتا ہے، ہوگا کہ اس میں اپنے شخصیت اور اپنے کردار میں ایک لچک لانی ہوگی، کیونکہ شادی جو ہے وہ کسی چیز کے لینے اور دینے کا نام ہے، شیئرنگ جسے انگریزی میں عام طور سے کہتے ہیں، مشترکہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ان لوگوں کو اپنی فکر میں تبدیلی لانی ہوگی، میں جو ہے وہ نہیں چلے گا،
اب ہم کا لفظ آئے گا، اب ہم کا لفظ آئے گا،
انفرادی سوچ، الگ الگ سوچ نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو اس کے لیے اپنے کو تیار کریں۔ دوسری چیز جس کے لیے وہ تیار کریں وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے توقع بہت زیادہ نہ رکھیں۔ شوہر جو ہے وہ بس مسلسل میرے ناز اٹھاتا رہے، میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت، اور ادھر شوہر کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بیوی جو ہے وہ کوئی کنیز خرید کے لا رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ بس اس کے ہی کہنے پہ چلے۔ تو یہ، اور اس چیز کو، اس فکر کو بڑھاوا دینے میں خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ گھر والے اس کو یہ سکھائیں کہ تم ڈکٹیٹر نہیں ہو، کہیں کے اوپر تم حکومت کرنے نہیں جا رہے ہو، تم گھرانہ بنانے جا رہے ہو، जहाँ तुम्हें बीवी का पूरा पूरा ख्याल रखना है, पूरी उसकी जिम्मेदारी उठानी है, पूरे उसके जज्बात को समझना है, उसकी तारीफें करनी है, मतलब ये सारी चीजें। और इसी तरह बीवी के घर वाले, लड़की के घर वाले ये समझाएं कि ये नहीं कि आप जरा से मैं नाराज हो गए और जरा से मैं मसला पकड़ दिया। कुरान ने आपको एक दूसरे का लिबास कहा है, और लिबास जो है वो एक इंसान को सर्दी गर्मी से भी बचाता है, उसके हुस्न में भी इजाफा करता है, यानी उसकी जो शख्सियत है वो उभर के सामने आए, और इसके अलावा उसके ऐबों को भी छुपाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। इसीलिए कुरान ने लिबास का, एक दूसरे का लिबास का बताया कि बीवी शौहर के लिए और शौहर बीवी के लिए लिबास है, कि ताकि एक दूसरे की कमियों को छुपाएं, एक दूसरे के हुस्न को उभारें, एक दूसरे की शख्सियत को उभारें, और उसके बाद एक दूसरे से तवक्को बहुत कम रखें। ये बहुत बड़ा जिंदगी का एक राज है।
बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे हम अजीज नाज़रीन। फिलहाल वक्त हुआ है हम चलेंगे हसन भाई की खिदमत में और देखते हैं कि वो हमें कहाँ लेकर चलते हैं। जी
यहाँ पे एक तो दौलत बाकरी साहब ने लिखा है कि सारे सहर टीवी वालों को सलाम, वालेकुम सलाम, और रुबाब बहन को बहुत दिनों के बाद देखकर बहुत खुशी हुई, उन्होंने ये लिखा है। और चले अहमद रमी साहब आपका पैगाम जो है वो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में शामिल करेंगे। रफीक हुसैन साहब माफ़ कीजिएगा, चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने। रफीक हुसैन साहब लिखते हैं कि हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया, जाने पेदर, इंसान में तीन चीज़ें पाई जाती हैं, एक तन्हाई अल्लाह की है, एक तन्हाई उसके अपने लिए, और एक तन्हाई कीड़े मकोड़ों के लिए। जो चीज़ अल्लाह की है वो इंसान की रूह है, जो चीज़ उसके लिए है वो है उसका इल्म, जो चीज़ कीड़े मकोड़ों के लिए है वो उसका बदन है। बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनन वाकई हम लोग को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए इस पर, और इंशाल्लाह कि हम लोग सही तरीके से इबादत यानी खुदा की इताअत कर सकें। वापस चलते हैं रुबाब मंसूरी।
बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका। मोहतरमा जहरा जदी साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, और मुतवाजन घराने के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अजीज नाज़रीन चलते हैं उनकी खिदमत में। यहाँ तक आपने हमें बताया कि खुद लड़की के वालदैन और जो लड़के के वालदैन हैं उन्हें ये बताना है कि कदम से कदम मिलाकर आप दोनों को आगे चलना है, ताकि एक मुतवाजन घराना आप यहाँ पर तश्कील दे सकें, बना सकें। एक चीज़ आपने इशारा किया सिर्फ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ हम चलते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में अब ये है कि ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम है कि जहाँ पर माँ बाप अब बाकी घर वाले और वो नया जोड़ा जिसकी अब शादी हुई है साथ मिलकर रह रहे हैं। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम हम ये देखते हैं कि एक जिम्मेदारी साथ है, या माँ बाप का खुदा न खास्ता इंतकाल हो चुका है और एक छोटी बहन है जिसको अब शादी करवानी है उसकी, या कुंवारा भाई है साथ रह रहे हैं, तो इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे यहाँ पर?
देखिए जो बात नहीं मैं कहना चाह रही थी इससे पहले जो आपने मौजू छेड़ा है उससे पहले वो ये कि दोनों को जब कदम रखें, हो सकता है एक दूसरे को जानते हो सकता है एक दूसरे को ना जानते हो, माहौल से एक दूसरे के वाकिफ ना हो लड़का और लड़की, तो जब इन्होंने मिल के एक घराने की बुनियाद रख दी तो उस वक्त लड़की को ज़्यादा वरना लड़के को भी, दोनों को ये थोड़ा सा वक्त इस पर देना चाहिए कि एक दूसरे को समझ सकें, देखें कि वो किस बात का कैसा रिएक्शन सामने देती है या देता है, समझे? तो एक दूसरे के मिजाज को समझें थोड़ा अरसा, और थोड़े दिनों में ये मिजाज ये चीज़ें ज़ाहिर है मालूम हो जाती हैं, अंदाज़ा इसका होने लगता है। फिर तो उसके बाद उनका ये काम वो होता है कि यानी एक दूसरे के लिए एहसास ज़िम्मेदारी करें, यानी हर औरत का इस्लामी लिहाज से जो मैं बात कर रही हूँ कि उसमें औरत के हकूक हैं, मर्द के हकूक हैं, ठीक है ना? औरत को जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ दिए गए, मर्द को भी इसी तरह जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ दिए गए। तो ये एक सबसे पहली चीज़ ये कि एक दूसरे के मिजाज से, क्यों? क्योंकि शादी के पहले जैसे आजकल जो फैशन है कि साथ में घूम रहे हैं, या मान लीजिए कि ख़ानदान के ही एक दूसरे को जानते हैं, उसके बावजूद जब एक छत के नीचे रह लेते हैं तब असलियत पता चलती है। उससे पहले जो है वो इंसान को शख्सियत का एक दूसरे के अंदाज़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो जब वो अंदाज़ा हो तो उस अंदाज़े पर यानी अपने आप को पूरा उतारने के लिए जो आपने अंदाज़ा किया कि ये मिजाज है, ये चीज़ें हैं, तो अब आपको अपने में थोड़ी तब्दीली लानी होगी। दोनों से मैं कह रही हूँ, लड़की और लड़के दोनों को अपने में तब्दीली लानी होगी। ये अपने फ़राइज़ को आप देखें कि आप क्या क्या पूरे कर सकते हैं, शरा ने क्या क्या कहा है, आप उसका नानो नफ़ा देंगे, आप उसका एहतराम करेंगे, एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उससे मोहब्बत करेंगे क्योंकि मवद्दत खुदा ने लिखी है, और मोहब्बत और मवद्दत का फ़र्क मैंने एक प्रोग्राम में बताया था कि लोग जानते ही हैं इस बात को कि मोहब्बत सिर्फ दिल में होती है, ठीक है ना। मुवद्दत जो है, जब आप उस मोहब्बत को बरूए कार लाने को अपना फर्ज समझें, अपने कामों के जरिए, अपनी खिदमात के जरिए, अपने यानी अमल के जरिए उसको दिखाएं, अमली शक्ल में जब मोहब्बत को दिखाएं तो वो होती है मुवद्दत। तो आपके दरमियान खुदा ने मुवद्दत रखी है, आप उसे अमली शक्ल में दिखाएं, लड़की भी और लड़का भी। तो ये जब यानी ये कैफियत पैदा होगी तो थोड़े दिन में वो अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ेगी। बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि शुरू से ही दूसरों की मुदाखलत बहुत बढ़ जाती है
और यहीं से मसाइल
शुरू होते हैं। जब चाहे वो साथ भी रहने हो, कई बार ये होता है अलग रहने में भी मुदाखलत बहुत ज़्यादा रहती है। बुज़ुर्गों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये नया जोड़ा है, इन्हें एक दूसरे को समझने में मदद करें, इनके ऐबों को अभी हम छुपाएं, और लड़की या लड़का जो भी उनका है उसको इस बात की हिम्मत, जिसके साथ वो रह रहे हैं, मसलन लड़का लड़का है उसके वालदैन उसके साथ में, तो लड़के को बहू की खूबियां बताएं।
बिल्कुल,
अगर कहीं पर है बच्चा है अभी समझ जाएगी, थोड़ा अरसा गुजरने दो, अभी उसे तजुर्बा नहीं है। इस कैफियत से लड़के को अगर वो नाराज भी हो रहा है, अगर वो गुस्वर भी है, तो भी उसको समझाएं। और ये भी बतलाएं कि इस गुस्से का नतीजा जो है बहुत बुरा भी हो सकता है, और अगर इस दुनिया में ना निकले तो उस दुनिया में जरूर लिखा जा रहा है वहां, ये सारी चीजें। और बीवी के साथ जो है वो अच्छा अखलाक, मैंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कौल में देखा कि ईमान का हिस्सा है, यानी उसका ईमान काबिले कबूल नहीं है। रसूल अकरम की हदीस है कि किसी शख्स को बहुत ज़्यादा मोमिन और बहुत परहेजगार और बहुत सब कुछ, जब दफन किया गया तो किसी ने कहा कि क्या कहते हैं, ये बीवी के लिए बस बहुत बदअखलाक था। तो रसूल ने कहा अगर तुम मुझे पहले तुमने बताया होता तो मैं उसके जनाजे में शरीक ना होता। इस हद तक सज़ा है इसका, इन कामों की, यानी खुश अखलाक़ी ख़ानदान के अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब ऐसी खुश अखलाक़ी होगी तो जाहिर है लोग एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझेंगे। अब चाहे लड़के के वालदैन साथ में हैं, ठीक है ना, तो बीवी फिर उनको अपने मतलब अपनी जिम्मेदारी के तौर पर उनको देखेगी कि भाई शौहर की मेरी जिम्मेदारी है, तो ये तो मेरे वालदैन है, शरा ने इसीलिए इन्हें हमारे लिए ससुर को बाप की तरह बताया और ये महरम है क्योंकि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। अब तो मेरे शौहर को खुश भी करना और फिर मेरी अपनी जिम्मेदारी है, वो ये समझ के उनको खुश रखे। और अगर दूसरी तरह की फैमिली की, मतलब उसमें कोई और, कोई मसलन लड़के की कोई बहन भी मौजूद है या कोई भाई भी मौजूद है जिसका देखना है, जिसकी मैंने
जिम्मेदारी है,
तो फिर उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस लड़के लड़की कम उम्र के हों ज़्यादा उम्र के हों, उनको कंट्रोल किया जाए कि वो इन नए इस नए जोड़े की ज़िंदगी में मुदाखलत ना करें। और यही काम सास ससुर को भी करना चाहिए।
बिल्कुल ऐसा ही
समझ, अगर वक्त हो तो मैं इस बात को
इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, सही, इंशाल्लाह नाज़रीन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे यहीं से, और आप भी हमारे प्रोग्राम में साथ दे सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा हसन भाई व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है, आपके सवालात का हम इंतजार करें। चलते हैं हसन भाई की खिदमत में।
बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे मुख्तलिफ कोर्ट से सब जो खुद घराने के हवाले से हैं, और उसमें यह कि तकरीबन जितने दुनिया भर की अहम शख्सियात हैं जितनी, सब ने घराने की अहमियत पर ज़ोर दिया है, वो चाहे मुआसिर हम लोगों के अहम शख्सियात हों या फिर जो है गुजरी हुई हों, तो इन तमाम ने ये चीज़ पाई है कि अगर एक मुआशरे को मज़बूत बनाना है तो हमें घराने को यकीनन मज़बूत बनाना होगा। मीरतरत हैदरी साहब ने लिखा है, इस दिवाजी ज़िंदगी में हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे के हकूक़ का ख़ास ख्याल रखें और इस्लामी दायरे में रह कर वो काम एक दूसरे के लिए अंजाम दें जिसमें दोनों की रजामंदी हो। अहमद रमीज़ साहब लिखते हैं कि बाज़ घरानों में अमीर अल मोमिनीन की सीरत और रविश को अपनी ज़िंदगी के लिए नमूना बनाने के बजाय फिल्मी स्टारों की ज़िंदगी को अपने लिए नमूना बनाया जाता है। अक्सर घरानों और इज्तिमा में इन मुश्किलात की वजह से सीरत पर अलवी सीरत पर बेतवज्जुही और मगरबी सकाफत को अपनाने की इसकी यानी असल वजह उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि हिंदू पाक में टी वी सीरियल्स वगैरह में एक कामयाब घराने को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यकीनन ऐसे ही अच्छा होता अगर ऐसे प्रोग्रामों को कोई तवज्जो न दी जाए। और बाकी हमारे नाज़रीन को भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है, देखते रहिए आज का प्रोग्राम।
बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपका और नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो अपनी राय से हमें आगाह करते रहते हैं। और मोहतरमा ज़हरा जैसी साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। और जी, हमने यहाँ तक गुफ्तगू बढ़ाई थी कि एक जॉइंट फैमिली जो वालदैन के साथ है, एक जॉइंट फैमिली जिस पर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है या कोई छोटा भाई बहन घर में मौजूद है। जी
देखिए, जिसमें आपने कहा कि वालदैन मौजूद हैं और उसके साथ कोई छोटा भाई बहन है या कोई भी मौजूद है, एक या दो अफराद ऐसे भी मौजूद हैं, तो वालदैन के सिलसिले में अक्सर ये देखा जाता है कि मिसाल के तौर पर कई बेटे साथ में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब उसमें एक तो ये कि अगर फुल यूनिट घर नहीं है मिले हुए, यानी हर एक का मतलब कमरा अलग हो और हर एक का सहन एक छोटा अलग हो, कि जहाँ पे औरत वो आज़ादी से रह सके, जिस वक्त नहाए, जिस
सही
वक्त अपने बच्चों के साथ बैठी है, अपने शोहर के साथ है, तो उसमें ये होता है कि फिर वो हिजाब वाला मसला ख़त्म हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है थोड़ा थोड़ा, धीरे 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 जो हज हिजाब खत्म हुआ है मुसलमानों में, उसके हम लोगों के यहाँ उसकी वजह की यही रही है कि मतलब हिजाब का मतलब हर वक्त कौन कितना ज़्यादा ओढ़े लपेटे रह सकता है, लोगों को खटखटा के आने की आदत नहीं है, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम और दाखिल हो गए, और कई बार सलाम भी बाद में किया, पहले दाखिल हो गए ये सोचे हुए कि भाई कौन है, किस
अंदर
तरह
कौन बैठा
बैठा
है,
है, कौन क्या बैठा है, तो ये और घराना है तो आप उसमें बुरा भी नहीं, मतलब आपको
कह
मान
सकते
बुरा नहीं मानना चाहिए, तो अपने
जी
और शरा कह रही है कि नहीं, शरा ने महरम और नामहरम रखा है, तो आपने माँ शरा को भुला दिया।
सही
इसके अलावा मतलब चीज़ों में हुक्मरानी का मसला ये है कि लड़की शादी होके आती है, ठीक है ना, अब उसको मतलब शोहर के साथ कहीं जाना चाह रही है, अब दोनों अलग प्रोग्राम कोई नहीं बना सकते,
बिल्कुल
क्यों, क्योंकि या तो अगर बड़े भाई हैं साथ में तो बड़े भाई का हुक्म चल रहा है, अगर बाप है साथ में तो बाप का हुक्म चल रहा है, तो मुझसे पूछा क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं, मेरी इजाज़त के बगैर फलां जगह कैसे जा सकते हैं, ये वाली कैफियत जो होती है ये नफ़रतें बढ़ा देती है। यहाँ पर आप शरह का हुक्म नहीं चलता, फ़र्द का हुक्म चलता है, और खानदानों की नाकामी में और जो झगड़े बढ़े हैं और जो अदब बड़े और छोटे का ख़त्म हुआ है, उस सब की वजह यही वाली वो आदतें हैं कि जिसमें अगर बच्चों को चाहिए कि वो वालदैन को बताएं पूछें, ठीक है ना, लेकिन वालदेन का ऐसे में फर्ज ही बनता है भाई तुम बड़े हो मुनासिब समझते हो चले जाओ,
तुम्हारी
कोई
शादी
बात
हो
नहीं,
चुकी है,
शादी हो
जिंदगी
चुकी
है।
है, अगर उन्होंने एक बार नहीं भी बताया तो आपको इतना उसे दिल पे लेने की जरूरत नहीं है कि इसका ये मकसद हो जाए कि बस आपकी बेहतरामी हो गई, तो एहतराम मुतकाबिल हो, एहतराम का माहौल पैदा किया जाए, बुजुर्ग अपनी तमाम तर शफकतों और अपने तमाम तर तजुर्बों को उनमें मुंतकिल करें, अपनी औलाद में और नए आने वाले जोड़े में मुंतकिल करें, तो एहतराम वाली कैफियत ज़्यादा पैदा होगी, और उस वक्त ये लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी ज़्यादा करेंगे, निवालदेन का एहतराम ज़्यादा करेंगे, उनकी खुशी और उनके मुश्किलात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझेंगे, ये सारी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरे ये कि अब अगर खाली मियाँ बीवी और बच्चों का, जैसे जो आपने कहा कि अगर कोई और भाई बहन है, तो भाई बहन के सिलसिले में यही है कि एक तो वो महरम नामहरम का मसला ज़रूर होना चाहिए अगर भाई है तो, ठीक है ना, तो उसको एक खास उसकी हुदूद होनी चाहिए कि वो कब आए इन लोगों के कमरे में हो या इनकी तरफ जो इनका इलाका है, और कब ना आए, ठीक है ना, उसको एक मतलब हद होनी चाहिए उसकी, बिल्कुल उसे पता होनी चाहिए। दूसरे ये कि जिंदगी में इनकी मुदाखलत का किसी को हक नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें ये वालदैन की इजाज़त लेके करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, वालदैन से तजुर्बा हासिल करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर मुदाखला शुरू हुई तो वहीं से फिर लड़ाई झगड़े और मसाइल शुरू हो जाते हैं, इसका खास ख्याल रखा जाए।
यहाँ पे हम लोगों के एक नाजरीन में से हैं जो गिलगित से हैं, उनका नाम उन्होंने अपना नहीं भेजा है, आखिर में फ़ोन नंबर क्योंकि 159, तो अपना नाम भी हम लोग के लिए भेज दीजिए, शुक्रिया अदा करते हैं आपका। जरीना अहमद ख़ान इस स्कर्दू बल्तिस्तान से भी प्रोग्राम हमारा देख रही हैं, और वो लिख रही हैं बहुत सारे घरानों में बड़े छोटे एक दूसरे को तुम कह के पुकारा जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि आप कह कर पुकारना चाहिए ताकि दूसरे भी इनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो।
बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका, नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारा सवाल जो ताहिरा ने हमारे लिए
जी
बेहाल
जी
से
जी
भेजा है, जी बताइए सवाल है सर।
भाई इसके लिए तो बिल्कुल वाज इस्लाम में जो बताया गया है, यानी कानून रखा गया है, उसमें यह है कि खातून को शोहर का बहुत एहतराम करे,
सही,
उसको जिसे कहते हैं अहमियत दे, समझते हैं अहमियत दे, अहमियत बेन माना, यानी बहुत सारे जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो इस पर करते हैं कि इस्लाम ने औरत को दबा के रखा है, ऐसा नहीं है, मर्दों की फितरत ये होती है कि वो किसी से नसीहत नहीं सुनना चाहते, ठीक है ना, मैं मतलब बेहतर जानता हूँ, वो किसी से मदद लेना नहीं चाहते, ठीक है, गुरूर एक ख़ास एक मतलब अपने अंदर एक खुद यानी एतमाद होता, खुद एतमादी ज़्यादा होती है, जो भी कहें उसने, मैंने इस्लाम में यह है कि वो उसको तुम्हारा सरपरस्त बनाया गया है, सरपरस्ती के साथ उस पर कितनी पाबंदियां और कितने ज़्यादा कि बीवी के लिए क्या क्या करो वो सारे कवानीन कोई नहीं देखता, सिर्फ ये कि मतलब हम बराबर हैं, बराबरी का मतलब कई बार ये होता है कि औरत जो चीज़ नाज के साथ उससे मर्द से करवा लेती है, वो मर्द सोच भी नहीं सकता कि उसने मैंने कैसे औरत का कहना मान लिया, आप उसे हुक्म ना चलाएं, आप उसे एक चीज़ अदब से कहें, और जब अच्छा इसके अलावा जो उसमें दूसरी कमियां हों उनमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत के ज़रिए उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें।
बिल्कुल
इसी तरह शौहर का फ़र्ज़ है, बीवी को अटेंशन चाहिए, बीवी को आपकी मोहब्बत चाहिए, और अगर आपने वो मोहब्बत नहीं की तो आप ईमान से खारिज हो जाएंगे, ये कैफियत है। और आप उसके हुकूक का पूरा ख्याल रखें, जो हुकूक यानी नानो नफका, उसका लिबास, उसकी उसके जज्बात, उसके एहसासात, सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना होगा और उसके साथ उसे पूरा पूरा वक्त देना होगा। जो वक्त आप घर में, आप दफ्तर से होके आ गए, अब जो है तो उसमें आप अपने वक्त को आप जहन में रखें कि इतना वक्त मुझे बीवी से बातचीत में गुजारना है, कोई उसकी मुश्किल है, कोई परेशानी है, किसी चीज़ में वो आपकी मदद चाहती है,
कोई नाराज़गी है,
कोई नाराज़गी, कोई भी चीज़, आप उसको अपनी मोहब्बत पूरी पूरी उसको दें और उसे एहसास दिलाएं, ज़बान से कहें कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। और उधर बीवी का फ़र्ज़ ये है कि शौहर के घर की पूरी पूरी वो निगरानी करे, यानी उसमें हिफाजत करे, वो उसका फ़र्ज़ फ़राइज़ जो खुदा की तरफ से दिए गए, उसकी मर्ज़ी के बगैर घर से बाहर ना निकले। तो मर्ज़ी के बगैर होता यह है कि शुरू में आपको एतमाद एक दूसरे का हासिल करना है, उसके बाद एक कैफियत ये आती कि जो आपकी मर्ज़ी वही उसकी मर्ज़ी। तो अब शौहर जानता है कि मेरी बीवी किसी ऐसी जगह जाएगी नहीं जो नामुनासिब हो, उसके उस वक्त फिर पूछने की बात नहीं होती, फिर ये खुद ही ज़हनी तौर पर इतना तवाज़ुन बरकरार हो जाता है कि बीवी को इसकी ज़रूरत नहीं होती कि वह हर बार पूछे। अगर हर बार पूछे तो कि भी तुम्हें तो मैंने कहा हुआ है कि जहां मुनासिब
समझे, कब तुम्हें टोका है,
कब तुम्हें टोका है, ये वाला जवाब मिल जाता है। तो इसलिए शुरू के दिनों में एक दूसरे की मर्जी के बगैर घर से ना जाएं, बाहर ना जाएं, उसके घर का पूरा पूरा ख्याल रखें, उसका पूरा एहतराम करें, और दोनों को एक दूसरे पर अगर कोई जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी का भी एहतराम करना चाहिए। मिसाल के तौर पर लड़की के घर वालों को लड़की की मदद की मिसाल के तौर पर ज़रूरत है तो उसकी उसे इजाज़त दे कि हाँ वो जाके कर सके, और इसी तरह शौहर की जिम्मेदारियों को बीवी पूरी तरह से समझे, तब जाके एक मुतवाजन घराना वजूद में आता है।
बिल्कुल ऐसा है, गाड़ी के दो पहिए जब साथ ही घूमते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ सकती है। और जी बहुत शुक्रिया आपका अदा करती हूँ मोहतरमा ज़हरा ज़ैदी, आप तशरीफ़ लाई, हमेशा की तरह मालूमाती गुफ्तगू रही आपकी, और मेरे लिए तो ये गुफ्तगू बहुत मुफीद साबित और बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी।